आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष व्यय पर्यवेक्षक किए गए तैनात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विभिन्न उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। कल तक भरे जा सकेंगे पर्चे। मतदान 26 अप्रैल को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध जन को किया संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज में कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। और चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत, 1 घायल। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। साथ ही चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है। आयोग ने कल इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय वी नायक को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक, पूर्व आईपीएस अधिकारी मनमोहन सिंह को पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक और सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राजेश टुटेजा को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन पूर्व लोक सेवकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सतर्कता के साथ देखरेख का काम सौंपा गया है। ये पर्यवेक्षक खासकर पैसा, ताकत और फर्जी सूचना से पैदा होने वाली चुनौतियों की निगरानी करेंगे और इसकी सूचना सीधे निर्वाचन आयोग को देंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का क्रम जारी है। कल अमरोहा में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें बसपा के मुजाहिद हुसैन, भाजपा के कंवर सिंह तंवर और 2 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। इस सीट के लिए अब तक कुल 5 नामांकन हो गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से कल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह सोलंकी ने 2 पर्चे दाखिल किए। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से नर्वदेश्वर दीक्षित और नेशनल पार्टी से प्रत्याशी किशोर सिंह ने नामांकन किया। इसी के साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया, जिसमें संजीव कुमार, प्रवीण शर्मा और महकार सिंह शामिल हैं। 1 अप्रैल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी महेंद्र नागर ने नामांकन किया था। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए अब तक कुल 7 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। अलीगढ़ सीट पर कल 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। मेरठ लोकसभा सीट से कल भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी नामांकन दाखिल किया। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 अप्रैल तक चलेगी। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। हाल ही में सपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर सरजना से विधायक अतुल प्रधान के नाम की लिस्ट जारी कर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने इस बार अपने 3 बार से लगातार सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां प्रचार प्रसार की तैयारी कर रही हैं। मेरठ में दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होगा। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
दूसरे चरण की 8 सीटों पर कल तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। इस चरण की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। पीलीभीत में श्री योगी ने कहा कि यहां हमने इको पर्यटन को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर यह चुनाव हो रहा है। बदायूं में श्री योगी ने कहा कि आज का भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव माफिया राज और कानून राज के बीच है। बरेली में श्री योगी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब लोग वोट करेंगे तभी विकसित भारत बनाने के लिए सही सरकार का चयन होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कन्नौज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है कि अब कन्नौज में उनका काम बनने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया उससे आगे कोई विकास नहीं हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल तेज रफ्तार डंपर ने दर्शनार्थियों से भरे ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 8 लोगों में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों में से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल अमरोहा और मुरादाबाद में साइबर योद्धा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सूचना के युग में हमें सरकार की उपलब्धियों को सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाना है। इसमें साइबर योद्धाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। अमरोहा में श्री ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी से हमें बचना होगा। हमें सही ढंग से अपनी बात को रखना है ताकि आम लोगों तक हमारी बात स्पष्टता से पहुंचे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सफाई व्यवस्था एयरपोर्ट की तर्ज पर करने की तैयारी है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच वार्ता चल रही है। इसी महीने के अंतिम सप्ताह से सफाई की यह नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफाई व्यवस्था लागू करने वाला काशी विश्वनाथ मंदिर देश का पहला मंदिर होगा। इस व्यवस्था के तहत मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक कई चरण में मंदिर की सफाई की जाएगी। वर्तमान में मंदिर की सफाई व्यवस्था निजी कंपनी के हाथों में है। उधर कल काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने मंदिर परिसर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 54 स्थानों पर गंदगी मिली। इस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रति स्थान 5,000 रूपये की दर से सफाई कराने वाली निजी कंपनी पर 2,70,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के बाद सी विजिल ऐप से प्रदेश में 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल 1,395 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 774 शिकायतें सही पाई गई, जिसमें नियम के अनुसार कार्रवाई की गई। अभी तक पूरे प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 59 मिनट है, जो कि तय समय सीमा 100 मिनट से कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर सी विजिल ऐप में धनराशि वितरण, गिफ्ट कूपन वितरण, शराब वितरण, बिना अनुमति पोस्टर और बैनर लगाने जैसी शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप से लोग आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। वो चाहें तो अपनी पहचान उजागर किए बिना भी शिकायत कर सकते हैं। ये ऐप कोई भी अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के जरिए इंस्टॉल कर सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष व्यय पर्यवेक्षक किए गए तैनात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विभिन्न उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। कल तक भरे जा सकेंगे पर्चे। मतदान 26 अप्रैल को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज में कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। और चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत, 1 घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।